तो हम इसको अध्ययन करेंगे और पीछे दोहरा सकते हैं। एवं सचिन्तय भगवान सुराजे स्थाप्य धर्मजम् नन्दयम् आस सुहृदम् साधुनाम वर्तुम दर्शयन। ये 16वां श्लोक है, इसका अनुवाद है। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने के लिए संसार के परम नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। 17वां श्लोक हम पढ़ेंगे, जो आज का श्लोक है हमारा। उत्तरायं धृतो पुरो वंश साधु अभिमन्युना सवे द्रोणे अस्त्र संप्लुष्ट पुनः भगवतो धृतो उत्तरायं धृतो पुरो वंश साधु अभिमन्युना सवे द्रोणी अस्त्र संप्लुष्ट पुनर्भगवतो धृतो उत्तरायं धृतो पुरो वंश साधु अभिमन्युना सवे द्रोणी अस्त्र संप्लुष्ट पुनर्भगवतो धृतो। महावीर अभिमन्यु से उत्तरा द्वारा गर्भ धारण करने के बाद जब परीक्षित का शरीर भ्रूण अवस्था में था तो अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र द्वारा वह भस्म कर दिया गया था, किंतु भगवान ने गर्भ के भीतर दूसरा शरीर प्रदान किया। इस तरह पुरु का वंशज बचा लिया गया। यह घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर तथा जीव अर्थात आध्यात्मिक स्फुलिंग भिन्न भिन्न है। जब पुरुष के वीर के प्रदेश से स्त्री के गर्भ में जीव आश्रय पाता है तो पुरुष तथा स्त्री के स्त्रवों का मिश्रण होता है, जिससे मटर के आकार का शरीर निर्मित होता है, जो धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण शरीर में विकसित हो जाता है। किंतु यदि किसी तरह यह भ्रूण नष्ट कर दिया जाता है तो तो जीव को दूसरे शरीर में या दूसरी स्त्री के गर्भ में आश्रय लेना पड़ता है। वह विशिष्ट जीव जिसे महाराज कुरु या पांडवों का वंशज बनने के लिए चुना गया था, कोई सामान्य जीव न था और भगवान की महती इच्छा से उसे महाराज युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी होना था। अतः जब अश्वत्थामा ने महाराज परीक्षित के भ्रूण को विनष्ट कर दिया तो भगवान अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा अपने स्वांश से उत्तरा के घर में भावी एवं संकटग्रस्त महाराज परीक्षित को दर्शन देने के लिए प्रविष्ट हुए। गर्भ के भीतर अपने प्राकट्य से भगवान ने शिशु को प्रोत्साहित किया और अपनी सर्वशक्तिमत्ता से नवीन शरीर से उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। वे अपनी सर्वव्यापकता की शक्ति से उत्तरा तथा पांडव परिवार के अन्य जनों के भीतर तथा बाहर उपस्थित थे। ओम ज्ञान तेवृंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपं कदा वयं ददाति सुप्तकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां सार्वजातं सहगणरघुनाथं पितामहं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपदां सहगणरहिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले मते भक्तिवेदांत स्वामे इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशसारिणे। हरे आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं तीसरे अध्याय के तीसरे स्तर के तीसरे अध्याय में जो ये 17वां श्लोक है, इसमें महाभारत के युद्ध का दर्शन कराया गया है। बताया गया है कि जब दुर्योधन विफल हो गया था अपनी परिस्थितियों में तो उसने अपनी माँ से आराधना करी। माँ कौन है? गंधारी। गंधारी से आराधना करी कि आप किसी भी प्रकार मेरी मदद करें, क्योंकि बच्चा जो होता है जब वो परेशान होता है तो अपने माता पिता के पास जाता है। इसीलिए श्री प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि व्यक्ति को ये जो 20, 25, 40 साल के माता पिता हैं इनको छोड़कर उन माता पिता का ध्यान करना चाहिए जो कि करोड़ों करोड़ों वर्ष से हमारे माता पिता हैं। कौन है? राधा एंड कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो हमें सदा उनको याद करना चाहिए। इसी प्रकार से एक छोटा सा एग्जाम्पल है दुर्योधन का कि किस प्रकार दुर्योधन जब मुसीबत में था, जब उसने देखा कि अब कुछ नहीं होने वाला है तो जाकर अपनी माता को बताया। तो माता क्योंकि सती सावित्री थे, पतिव्रता थे, उनको जब पता चला उनके विवाह के बाद कि उनके पति जो है धृतराष्ट्र वो नेत्रहीन है, अंधे हैं, तो उन्होंने जाकर क्या किया, अपने भी आंखों पर पट्टी बांध दी। और पट्टी बांधने से उन्होंने बोला कि अपना पूरा जीवन मैं आप ही की तरह बिताऊंगी। तो यहाँ पर यह भी समझने वाली चीज है, जैसे आज स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चलने की दौड़ में लगे हैं, लेकिन बताया गया है कि स्त्री और पुरुष का क्या कर्तव्य है। स्त्री को हमेशा पुरुष पर निर्भर रहना चाहिए, अपने पति पर निर्भर रहना चाहिए, उसके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। पति को हमेशा गुरु पर निर्भर रहना चाहिए और उसके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। और गुरु को कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। जब इस प्रकार से परंपरा बनती है कि कृष्ण को गुरु समर्पित होते हैं, गुरु को उनके पति मतलब पुरुष समर्पित होते हैं और पुरुष को पत्नी समर्पित होती है, तो पूरा परिवार और बच्चे फिर माता पिता को समर्पित होते हैं, तो ये बन जाती हैप्पी कृष्णा फैमिली, है ना। हैप्पी कृष्णा फैमिली, पूरी फैमिली हैप्पी हो जाती है, है ना, क्योंकि वो सब लोग साथ में मिलकर भजन करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, याद करते हैं। इस प्रकार से दुर्योधन ने भी अपनी माता गंधारी को पुकारा तो माँ ने बोला कि देखो मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया है तो इसके कारण मुझे कुछ शक्तियां प्राप्त हुई हैं, तो तुम क्या करो कि तुम मेरे सामने नग्न अवस्था में आओ तो मैं तुमको इस प्रकार से एक शक्ति दे सकती हूँ कि तुम अब अपने युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि ये सारी की सारी दौड़ किस लिए थी, सिंहासन के लिए। उनको क्या चाहिए था, सिंहासन दुर्योधन को, और मिलने वाला था किसको, युधिष्ठिर को। तो यहाँ पर ये दौड़ चल रही थी कि मुझे मिलना चाहिए, और जिसके कारण महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो जब उन्होंने बुलाया कि तुम कल नग्न अवस्था में आना, तो दुर्योधन सोच में पड़ गया मैं कैसे अपनी माँ के सामने जाऊँगा। तो फिर माँ ने बोला कि मैंने तुझे बचपन में भी तो गोदी में खिलाया है, मैंने तो तुझे कपड़े पहनने सिखाया है, क्यों इतना शर्माते हो, तुम मेरे सामने आओ जिससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी, तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, लोहे जैसा बन जाएगा, और तुम फिर उसके बाद भीम आते हो, फिर भीम तुम्हें मार नहीं पाएगा। ये बात तो उसे बहुत अच्छी लगी, भीम का हमेशा उसके दिमाग में चलता रहता था कैसे भीम को मार दूं। तो जब माँ ने ये बात बोली तो माँ पर व्यक्ति भरोसा करता है, तो वो आया। जब आ रहा था माँ के महल में, गंधारी के महल में, तो रस्ते में कृष्ण मिल जाते हैं, क्योंकि कृष्ण किसके साथ है, पांडवों के साथ। वो चाहते हैं कि दुष्ट का विनाश हो और ये मर जाए ये सारे के सारे। तो उनको बीच में आकर बोलते हैं, अरे इतने बड़े हो गए हो और माँ के सामने नग्न अवस्था में जाओगे, शर्म नहीं आएगी। कह रहे नहीं नहीं मेरी माँ ने बोला बचपन में खिलाया। कह रहे बचपन की और आज की बात में भेद होता है, बचपन में और आज की बात में भेद है, जाओगे तो माँ क्या सोचेगी, क्या इसको संस्कार दिए हैं, देखो नंगा चलता है। जब इस प्रकार से बोला तो एकदम से उसके हृदय में इस प्रकार से स्फूर्ति आई कि हाँ नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसने केले का पत्ता लिया और अपने शरीर को सिर्फ अपने कहते प्राइवेट पार्ट को ढककर और वो चल दिया। जब वो पहुंचा गंधारी के महल में तो माँ बोली, आ गए वत्स जी, माँ आ गया हूँ। तो माँ ने अपनी पत्तियां खोली, जब खोली तो उनको दिव्य दृष्टि, वो कुछ ताकत प्राप्त थी जिसके कारण उनके नेत्रों से इस प्रकार से शक्ति निकली कि उसका पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन वो हिस्सा रह गया जो जांग का हिस्सा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पर केले का पत्ता लगाया था। तो माँ बोली, अरे मूर्ख तुमने ये क्या किया, ये क्यों लगा लिया। कह रहे हैं कि कृष्ण ने बोला कि तुम क्या माँ के सामने इस नग्न अवस्था में जाओगे। बोले कृष्ण तो ऐसा ही है, अब दोबारा ये नहीं हो सकता है, बस पहली बार में जो दृष्टि पड़नी थी उसी से वज्र का तुम्हें होना था, लोहे का, तुमने ये क्या किया। तो बेचारी बहुत विलाप करती है, लेकिन कहती है चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम युद्ध में जाओगे तो युद्ध में तो इस प्रकार से है कि नाभि से ऊपर वार किया जाता है, भीम तुम्हें वार करेगा ऊपर, तो ऊपर का शरीर तो वज्र का है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, चलो। तो चले गए, जब पहुंचे तो वहां पर भीम और दुर्योधन का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन और भीम के युद्ध में भगवान ने बार बार इशारा किया कि कहां मारो, तो बोलते ना कबड्डी 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 कबड्डी, ऐसे भगवान बार बार इशारा कर रहे। तो भीम मना कर रहा है कि ये तो वो है, अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। बोले जब अभिमन्यु को इन लोगों ने मारा तब अपराध नहीं हुआ था, तो इसलिए तुम भी ये अपराध कर सकते हो, है ना, इसके साथ में कर सकते हो। दुराचारी के साथ में दुर्व्यवहार किया जा सकता है, भगवद गीता में भी आता है जो आतताई है, जो इस प्रकार के कार्य करता है, औरतों को सताता है, नियमों के खिलाफ जाता है, उस व्यक्ति के दुराचार को नियम दंड देना ही चाहिए। इसका दंड यह है कि इसको गदा से प्रहार करो इसकी जंगा पर, क्योंकि वो जंगा इसकी क्या है, सॉफ्ट है। तो जब प्रहार किया जाता है तो वो बुरी तरह से चिल्ला उठता है और चिल्लाता है और गिर जाता है, और गिरने के बाद उठ नहीं पाता दोबारा, पूरा शरीर लोहे का है लेकिन सिर्फ इतने से हिस्से से मारा गया है ना। तो इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हम, हो सकता है कि हमारा पूरा शरीर आध्यात्मिक हो जाए लेकिन एक छोटी सी अहंकार ईगो जो है, वो छोटा सा शब्द ईगो, डिफिकल्ट टू गो जो है ना, बहुत मुश्किल है उसका जाना, वो हमको लेकर डूब जाए, डुबा देगी हमको। तो बताते हैं कि जिस प्रकार से जब हनुमान जी जा रहे थे कहाँ, लंका की ओर, जब लंका पहुंचे तो वहां पर दरबार पर एक राक्षस ने खड़ी थी, क्या नाम था उसका, लंक, हाँ लंकिनी। तो लंकिनी जो थी वो बोली कि वानर मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तो हनुमान जी बोले अरे तुम क्या बिगाड़ सकती हो, मैं राम का दास हूं और राम का दास होता है ना वो कभी उदास नहीं होता है, हमेशा बिंदास होता है। तो मैं जाऊंगा और तुमको मारकर अंदर चला जाऊंगा और लंका में से सीता मैया को इंफॉर्मेशन दूंगा और उनको मुक्त करा के ले जाऊंगा। तो देखिए आचार्यगण बहुत सुंदर बताते हैं कि जो ये सीता मैया है क्या है, आत्मा, हमारी आत्मा। और ये लंका क्या है, ये वो भौतिक शरीर जिसमें आत्मा फंसी हुई है। और रावण, रावण हमारा मस्तिष्क है जो कि बार बार इसी शरीर में उस आत्मा को कैद रखना चाहता है। जन्म जन्मांतर कितने जन्म निकल गए, बार बार अलग अलग चोला मिलता है, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी सूअर का, कभी मनुष्य का, लेकिन पूर्ण विकसित चेतना तक ना पहुंचने के कारण क्या होता है कि इसी शरीर में मस्तिष्क उसको बांध के रखता है, वो रावण है ना। तो बताते हैं और जो लंकिनी कौन है, वो जो राक्षसनी है वो हमारे शरीर में ईगो, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार वो इस शरीर में बांध के रखती है। तो जब भगवान के दास आते हैं इस आत्मा को मुक्त कराने के लिए तो हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी क्या कहते हैं, अपने उल्टे हाथ से, कहते हैं ना जैसे लड़ाई हो जाती है तू तो मेरे उल्टे हाथ का ही है, बस राइट हैंड की भी जरूरत है, उल्टे हाथ का एक थप्पड़ मारूंगा तो गिर जाएगा। तो हनुमान जी उल्टे हाथ का मुष्टिक प्रहार करते हैं और मुष्टिक प्रहार कर क्या होता है, वो लंकिनी गिर जाती है। और गिर कर जब वो उठती है तो कहती है कि हे वानर अब मैं समझ गई कि लंका का विनाश होने वाला है। क्यों, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि जिस दिन भी कोई वानर तुमको उल्टे हाथ से घूसा मार के गिरा दे तो समझ लेना कि अब लंका का नाश होने वाला है। तो तुम वही वानर हो जिसकी इतने दिन से हमें प्रतीक्षा थी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब यहाँ राम राज्य आएगा। तो उसी प्रकार से ये हनुमान कौन है, भगवान के भक्त है, और ये मिथ्या अहंकार कौन है, लंकिनी है। तो जब भगवान के भक्त कथा सुनाते हैं तो हमारी जो मिथ्या अहंकार रूपी लंकिनी है ये कानों के अंदर जाने नहीं देती है, बार बार ऐसे करके मोड़ देती है कानों को, बैठे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, अच्छा वहां जाना है, ऑफिस का काम है, बस प्रसादम लेते ही निकल जाऊंगा, ये सारी प्लानिंग चल रही होती है। भगवान ने बस ये आधा घंटा भी दिया है कथा श्रवण का, उसमें भी अंदर से हमारे कान मुड़ जाते हैं, सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो मिथ्या अहंकार बीच में आ जाता है, जितना जानता हूं उतना ही काफी है, बस नियम पूर्वक आना है, बैठना है और जाना है, लेकिन कथा में क्या है वो समझ नहीं आता। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वासुदेवम कथा रुचि, अगर वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो ये मिथ्या अहंकार रूपी लंकिनी कभी नष्ट नहीं होगी, है ना। तो फिर क्या है, इसके लिए हनुमान जी जैसे भक्त चाहिए, जैसे हमारे फरीदाबाद के डिवोटी है ना, स्ट्रांग कॉन्ग्रीगेशन, वो जाते हैं सभी लोगों को प्रचार करते हैं और जोर जोर से बोलते हैं क्या,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
इसी प्रकार से जब वो भक्त जोर जोर से चिल्लाते हैं, मुष्टिक प्रहार करते हैं उस ईगो को और कथा सुनते रहते हैं हम ध्यान पूर्वक, तो एक ना एक दिन हमारी वो ईगो लंकिनी नष्ट होगी और फिर ये आत्मा जो सीता मैया रूपी है वो कहाँ चली जाएंगी, नारायण के चरणों में वापस, राम के चरणों में वापस। उसके लिए हमको चाहिए कि हम ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करें, वासुदेवम कथा रुचि, रुचिपूर्वक भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न करें और उनको ध्यानपूर्वक प्रीतिपूर्वक सुने और उनको अपने जीवन में उनसे शिक्षाएं प्राप्त करें और उनको अपनाने का प्रयास करें, तभी जीवन बदलेगा। खाली ये नहीं कथा सुनी और कथा बोल दी, उससे फर्क पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा शुद्धिकरण होगा लेकिन वो इंटेंसिटी जिस परसेंटेज से होना चाहिए उतना नहीं होगा। इसके लिए हम चर्चा कर रहे थे कि जब दुर्योधन बुरी तरह से विफल हो गया, हारने की अवस्था में आ गया, तो एक व्यक्ति आते हैं जो कि महाभारत के युद्ध में बच गए थे, कौन थे, अश्वत्थामा। आकर दुर्योधन को बोलते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुमने मुझे सेनापति नहीं बनाया, कर्ण को बनाया, उदय को मारा गया, तुम मुझे बनाते, भीष्म पितामह को तुमने भरोसा किया वो भी मारे गए, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तुम अगर मुझ पर भरोसा करते तो मैं तुम्हें विजय प्राप्त करवा सकता था। तो अश्वत्थामा जब इस प्रकार बोलते हैं तो दुर्योधन कहता है ठीक है ठीक है, मरने से पहले तक राजा चाहे बुरी स्थिति में भी हो लेकिन वो बता सकता है कि तुम सेनापति हो, तो मैं आज ही तुम्हें नियुक्त करता हूं कि तुम मेरे हेड सेनापति हो। तो कहता है ठीक है, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें गद्दी पर विराजमान करवाऊंगा, क्राउन ला कर दूंगा, नहीं लाया कम से कम पांडवों को तो नष्ट कर ही दूंगा। दुर्योधन कहता है देर मत करो, जल्दी जाओ जल्दी। तो अश्वत्थामा चला जाता है, जाता है
तो उनका शिविर, जिस शिविर में उनकी सेना, एक अक्षुणी सेना बची हुई थी, वहां पर जाता है। लेकिन भगवान तो जानते हैं क्या होने वाला है, सब कुछ सबके हृदय में विराजमान है, वो जानते हैं किसके मन में क्या चल रहा है, कौन सा व्यक्ति अहंकारी है, कौन सा व्यक्ति कब क्या करने वाला है, तो सब भगवान जानते। तो भगवान जानते थे, भगवान ने पांचों पांडवों को बोला कि जिस दिन युद्ध में विजय प्राप्त हो उस दिन अपने शिविर में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है दुश्मन आकर कभी हमला कर दे, तो इसलिए चलो हम निरीक्षण करेंगे। और वो लोग निरीक्षण करने के लिए बाहर चले जाते हैं और पीछे से ये आकर टेंट में आग लगा देते हैं। अश्वत्थामा आग लगाते हैं तो काफी सारी सेना तो जल जाती है, और बाकी जो ये इनके पुत्र थे पांडवों के, वो सो रहे थे पांच, है ना। और वो क्या करता है, सोचता है कि ये पांच पांडव अपने शिविर में सो रहे हैं, और अश्वत्थामा सोते हुए उनकी गर्दन काट लेता है। क्योंकि कितना बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार, मतलब अपना बदला लेने के लिए सोते हुए व्यक्ति को काट दिया। क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, अश्वत्थामा और दुर्योधन क्या चाहते थे, हमें राजगद्दी मिल जाए। ऐसे ही आज की सिचुएशन कहती है, सीट के चक्कर में लोग एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं, गद्दी का खेल है। इवन जब हम किसी भी स्थिति में होते हैं, चाहे हम भजन भी करने लग जाते हैं, लेकिन इस अहंकार वश हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, है ना। इसीलिए हमारा बार 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 चक्कर लग रहा है ना। तो इस अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा, इस लालच को खत्म करना पड़ेगा, इस गद्दी के मोह को समाप्त करना पड़ेगा। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, पांचों की गर्दन लेते हैं, बोरे में डालते हैं और लेकर पहुंच जाते हैं दुर्योधन के पास। दुर्योधन विजयी, विजय प्राप्त हो गई, हरिभो, और विजय प्राप्त हो गई। तो वहां पर जाते हैं तो दुर्योधन कहते हैं, अच्छा दिखाओ दिखाओ जल्दी, वो तो लेटा हुआ था, लाओ 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 पांडवों के सर दो मेरे को। तो पहला सर देता है, जो दबाता है, दबाते फूट जाता है, दूसरा फूट जाता है, भीम का दो, भीम का दो, बड़ा वाला दो। वो बड़ा वाला देते हैं भीम के पुत्र को भी। तो कहते हैं कि ये कैसे हो गया, ये तुमने क्या किया। पहले तो बड़ा खुश होता है दुर्योधन, मार दिया, वाह मेरे सेनापति, तूने बहुत बढ़िया काम किया। फिर बाद में रोता है जब वो फूट जाते हैं, तो कह रहा क्यों रो रहे हो, कह रहे इसलिए कि वो पांडव, वो भीम, जो कि मेरी इतनी बड़ी गदा से भी मारने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसकी गर्दन का इतनी हल्की होगी कि दबाते ही फूट जाएगी। और वो रोने लगता है, तुमने भीम और पांडवों की गर्दन नहीं काटी, तुमने उनके पुत्रों की काट ली, और अब इससे तुमने क्या किया, हमारे भाइयों की आपस की लड़ाई में तुमने हमारे जो जितनी भी परंपरा थी, जितने भी वंश थे, उनका नाश कर दिया। और इस कारण वो रोता है। तो दुर्योधन को ये प्राप्त था कि वो हंसेगा और रोएगा, तो उसी पल उसकी मृत्यु होगी और उसको कोई नहीं मार सकता। ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर वो रोए और हंसे तो समाप्त हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस समय वो प्रसन्न होता है, खुश होता है कि मारे गए पांडव, और साथ में दुखी होता है कि ये तुमने क्या किया, पांडव तो अभी भी जीवित है, तुमने हमारा वंश समाप्त कर दिया। इस सुख और दुख के कारण क्या होता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जब वो मर जाता है तो पांडवों को बोला जाता है कि भाई हमारे बच्चों का गर्दन काट ली। तो अर्जुन को तो बहुत गुस्सा आता है, भीम को भी बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करते हैं, देखते हैं किसने मारा, तो पता चलता है अश्वत्थामा ने इस तरह से वध कर दिया सोते वक्त। तो जाते हैं, पकड़ लेते हैं अश्वत्थामा को, मारते नहीं, उसको पूरा बांध लेते हैं रस्सियों में और लेके आते हैं कहां, द्रौपदी के पास। और द्रौपदी को आके बोलते हैं, ये देखो तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने है, अब बोलो इसको क्या करना है, गर्दन काटी जाए, हाथ काटे जाए, टांग काटे जाए, क्या किया जाए। द्रौपदी कहते हैं कुछ मत करो, इनको छोड़ दो। क्या कह रही है, इनको छोड़ दो, हमारे साथ कोई ऐसा कर दे, सिर्फ ऊंची आवाज में बोल दे हमसे, अरे प्रभु जी यहाँ कैसे आ गए, ये क्या कर दिया हमने, हम उस व्यक्ति से बात करना छोड़ दें। और यहाँ पर इतना कुछ होने के बाद, पुत्रों की हत्या करने के बाद भी क्या किया, द्रौपदी कह रही है इनको छोड़ दो। क्यों, क्योंकि ये वो है जो कि तुम्हारे गुरु के पुत्र है, और गुरु माता इसके मरने पर उसी तरह विलाप करेगी जिस तरह मैं कर रही हूं आज अपने पुत्रों के मरने। तो गुरु जिन्होंने तुमको शिक्षा दी, क्या तुम उनको ऐसी स्थिति में लाना चाहते हो कि गुरु तो ऑलरेडी मर चुके हैं लड़ाई में, और उनकी जो गुरु माँ है, गुरु पत्नी है, वो भी क्या होगा, मारी, मतलब रोएंगी कि उनका पुत्र भी मारा गया, इकलौता पुत्र। इस तरह से द्रौपदी बताया गया है कि कितना अच्छा उनके मन में भाव है, इसीलिए कृष्णा नाम दिया गया उनको, जो सदा कृष्ण के बताए रास्ते पर चलती है, कृष्ण का चिंतन करती है, कृष्णा नाम दिया गया उनको। इसी के कारण उतना दयालु भाव है उनके अंदर कि छोड़ दो इनको। और उन्होंने फिर क्या किया, छोड़ा, लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि कुछ तो दंड देना चाहिए। तो
तो फिर बाद में डिस्कस करके सारे लोगों में यह हुआ कि क्या दंड दिया जाए कि इनके बाल काट लिए जाए जगह जगह से, ताकि ये जहां भी जाए इनकी बेइज्जती हो कि देखो यहां से बाल है, यहां लंबे, यहां से बाल ऐसे हो जाए, तो बुरा बोलते हैं ना, बेइज्जती करती गई। और साथ में मणि, यहां पर उसकी एक मणि थी वो भी निकाली गई, जिसके कारण उसकी सारी शक्ति समाप्त हुई। लेकिन इसके कारण होने से उसके पास सिर्फ एक अस्त्र बाकी था जिसका नाम क्या था, ब्रह्मास्त्र। और उसने उस व्यक्ति को देखो, इतने दयालु भाव होने के बाद भी उसके मन में से द्वेष समाप्त नहीं हुआ। बोलते हैं कि देखिए, जब तक हमारा ये द्वंद्व मोह नहीं खत्म होगा तब तक हम भजन नहीं कर सकते। इसीलिए अश्वत्थामा भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहा, इतना सब कुछ परेशानी स्थिति में आने के बाद भी भगवान को याद नहीं कर रहा। और हम लोग भी क्या करते हैं, जीवन में कितने भी कष्ट आए लेकिन भगवान को याद नहीं करते हैं, इस पर निर्भर, उस पर निर्भर, लेकिन भगवान पर निर्भर नहीं होते। अगर हम भगवान पर निर्भर हो जाए तो सारी चीजें अपने आप ही सही हो जाती हैं। जैसे पांडवास के साथ में भगवान उनके साथ थे तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जबकि सारी लड़ाई चल रही है, लेकिन उसके बाद भी वो परेशान नहीं है, टेंशन में नहीं है। आज लोग टेंशन में क्यों है, क्योंकि वो भगवान पर निर्भर नहीं है। तो इसी प्रकार से जब वो क्या करता है, ब्रह्म अस्त्र छोड़ देता है, और उस ब्रह्म अस्त्र के छोड़ने से सीधा किसके गर्भ पे जाकर लगता है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में, जिसमें कौन है, परीक्षित महाराज। और बताते हैं कि जो ये ब्रह्म अस्त्र होता है, इसके ये इस प्रकार का होता है कि जिस लक्ष्य पर छोड़ा गया है उस लक्ष्य पर जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि डाइवर्ट हो जाएगा। और इस प्रकार का है कि जिस इंटेंसिटी से छोड़ा गया है इसको काटा भी नहीं जा सकता, इसको मोड़ा भी नहीं जा सकता, और ये सीधा जाएगा और उसका वध करेगा ही करेगा जिस डायरेक्शन में छोड़ा। मतलब आज की अग्नि मिसाइल भी है ना, फेल हो जाएगी इसके आगे, फेलियर है एकदम। क्योंकि अग्नि मिसाइल को भी हो सकता है कोई दीवार खड़ी कर दी जाए तो रुक जाएगी, या बीच में से उसका आईसी निकाल दी जाए तो वो बंद हो जाएगी। लेकिन ब्रह्म अस्त्र प्रकार का है कि वो मोड़ा भी नहीं जा सकता, काटा भी नहीं जा सकता, और जिस लक्ष्य पर जितनी दूरी में भेजा गया है, चाहे वो जो टारगेट है वो आगे आगे भागे, तीर पीछे पीछे जाएगा, और उसको नष्ट करने के बाद ही वापिस आएगा। इस प्रकार का ब्रह्म अस्त्र था, तो अब इसकी रक्षा कौन कर सकता है, कोई तरीका कौन कर सकता है, भगवान। भगवान के भगवान को क्या किया, तो पांडवा जो थे भगवान पर निर्भर थे, तो उत्तरा ने अपने पति तो उनके ऑलरेडी मारे गए थे युद्ध भूमि में, उन्होंने अपने जो क्या थे फादर इन लॉ पांडवा, उनको नहीं पुकारा, किसको पुकारा, कृष्ण को, जोर जोर से क्या पुकारा, अरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, पुकार से पुकारा उन्होंने। और जब पुकारा तो भगवान तुरंत उपस्थित हुए, और भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। और वो कहाँ आए, अपनी गदा लेकर उत्तरा के गर्भ में आकर उन्होंने अपनी गदा को ऐसे करके सर्कुलर फॉर्म में चलाना शुरू किया, और जब चलाया तो वो ब्रह्म अस्त्र वापिस चला गया। जैसे इस श्लोक में वर्णन है कि बिल्कुल भस्म हो चुका था वो भ्रूण, खत्म होने वाला था, लेकिन उसकी रक्षा किसने करी, गर्भ में भी किसने करी, कृष्ण ने करी। आप देखिए कि अभी जो व्यक्ति पैदा भी नहीं हुआ, जो जीव आत्मा अभी शरीर लेकर आई भी नहीं है, उसकी भ्रूण की रक्षा, भ्रूण अवस्था में उसकी रक्षा कृष्ण ने करी। कितने पावरफुल है कृष्ण का नाम, कृष्ण स्वयं, जो कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपकी रक्षा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रहलाद महाराज के लिए आए थे आज नहीं आएंगे, ध्रुव महाराज के लिए आए थे आज नहीं आएंगे, नरसिंह भगवान बनकर पकड़ हुए लेकिन आज नहीं हो सकते। आज भी अगर हमारी इंटेंसिटी, हमारी अगर इस प्रकार से हमारी अवस्था हो, मानसिक अवस्था, कि हम भगवान पर भरोसा करें, श्रद्धा विश्वास रखें, तो भगवान आते हैं। आप देखिए वही परीक्षित महाराज, उनका नाम परीक्षित इसीलिए दिया गया कि वो जब बड़े हुए तो अपनी राज्यसभा में वो सबका निरीक्षण करते थे, सबकी गोदी में जाते थे और ये परीक्षा लेते थे कि कहीं वो तो नहीं व्यक्ति जिसने मुझे गर्भ में बचाया था, और कृष्ण को हमेशा दर्शन करने चाहते थे। और एक दिन जब उन्हें कृष्ण का दर्शन हुआ तो वो समझ गए, उनकी गोदी से हिले नहीं, हटे नहीं, बोले और मुस्कुराने लगे कि वही व्यक्ति है जिसको मैंने जन्म होने से पहले जिसका दर्शन किया। इसीलिए उनका नाम परीक्षा करने के कारण परीक्षित भी दिया गया। तो जो ये परीक्षित महाराज है, इनके अंदर देखिए भगवान का दर्शन पाने से क्या परिस्थितियां हुई कि उनके जीवन में उनको श्राप मिला श्रृंगी ऋषि द्वारा कि ये 7 दिन में मारे जाएंगे तक्षक नाग के काटने के कारण। और उन्होंने 7 दिन तक क्या सोचा, कैसे मरूं, कैसे बचूं, कैसे प्लानिंग करूं, मृत्यु से कैसे हूं, क्या प्रोटेक्टिव दीवार बनाऊं, कैसे बॉडी गार्ड्स लाऊं। उन्होंने क्या सोचा कि मरना तो निश्चित है, तो क्या किया जाए,
क्या किया जाए?
श्रवणम कीर्तनम, श्रवण कीर्तन किया जाए और उनको बताया कि आप क्या सुनो, श्रीमद् भागवतम अमलम पुराण, ऐसा पुराण जो कि सुनने वाले व्यक्ति को भी अमर कर देता है, शरीर को अमर नहीं करता है, आत्मा को अमर करता है, क्योंकि आत्मा वापस भगवत धाम चली जाती है। और कहते हैं जब भगवत धाम जाती है तो यद तत्वा न निर्वत करते तद धामम पर, भगवान कहते हैं यहाँ आने के बाद व्यक्ति को वापस नहीं आना पड़ता, तो इस जगत में वो आत्मा चली जाती है। तो परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात तक लगातार श्रीमद् भागवत सुने। हम कितने घंटे सुनते हैं? 1 घंटा। और उसमें भी अगर पता हो कि जैसे क्लास समाप्त होगी उसके बाहर गेट के पास चंडामृत के गेट के आगे एक हथौड़ा लेके व्यक्ति खड़ा है, जो जो क्लास से बाहर निकलेंगे टक 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 मारेगा जोर से, तो कितने लोग श्रवण करेंगे? ध्यानपूर्वक वो सोचेंगे कौन सा गेट से निकल जाऊं कि हथौड़े से बच जाऊं, ध्यान नहीं आ पाएगा। वो बता रहे हैं कि उन्होंने प्यास पानी के बारे में भी नहीं पूछा, 4 दिन तो ऐसे ही निकल गए, कुछ पूछा ही नहीं पानी के बारे में। कितनी श्रद्धा है उनको श्रवण के प्रति, कितनी आसक्ति है भगवान की कथा के प्रति। और हमारी आसक्ति कैसी है कि आधे घंटे भी बैठना होता है तो उसमें मोबाइल 3 बार आता है, मैसेजेस आते हैं, है ना, इधर उधर मस्तिष्क भटकता है, इसके बाद क्या करूंगा, आगे की प्लानिंग होती है, लेकिन हमारी कथा के प्रति रुचि नहीं होती है। लोग कई बार बताते हैं कि व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए कि वो व्यक्ति बड़ा भक्त है तो वो आगे जा सकता है, ये छोटा भक्त है तो ये रह सकता है। बताते हैं, कथा में बता रहे थे कि भगवान के घर में लाइन सिस्टम नहीं चलता है कि ये 20 साल पहले आया तो ये पहले जाएगा, ये अभी आया है 2 साल पहले तो ये नहीं जा सकता। तो बता रहे थे कि वहां भगवान के घर में टोकन सिस्टम चलता है, लाइन सिस्टम नहीं चलता है। टोकन सिस्टम आप पूछेंगे कैसे चलता है, तो बताते हैं टोकन सिस्टम इस प्रकार से है कि जैसे डॉक्टर का क्लिनिक होता है वहां पर जाकर देखिए तो कई बार 10 बजे से लाइन लगनी शुरू होती है और 11:30 बजे तक एकदम भीड़ हो जाती है। डॉक्टर जब आते हैं 11:30 बजे तो एक व्यक्ति उनके पीछे पीछे आता है और सीधा क्लिनिक के अंदर, तो लोग बोलते हैं अरे नर्स क्या किया, रोको रोको ये कौन है, सीधा अंदर चला गया। तो जो कंपाउंडर नर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे भैया 7 बजे आके टोकन लेके गया था, 7 बजे टोकन लेके गया था, कह रहे अच्छा इसीलिए वो डायरेक्ट चला गया उसका नंबर। तो हम नहीं जानते किस भक्त ने, किस जीवात्मा ने कौन से जन्म में कौन सा टोकन लिया है। हो सकता है कोई अभी 1 साल पहले भक्ति में जुड़ा हो और सीधा उसकी शरणागति इतनी बढ़ जाए क्योंकि वो टोकन लेके आया है कि वो सीधा भगवत धाम चला गया। और हम सोचते रहेंगे 20 साल हो गए गुरु जी, 25 साल हो गए गुरु जी, प्रभु जी ऐसे करते रह जाए। तो वहां पर टोकन सिस्टम चलता। एक बार एक भक्त है बॉम्बे, वो बता रहे थे कि वो एक एयरपोर्ट पे थे, वो अपना एग्जाम्पल बता रहे थे किस प्रकार से भगवान जो है ना लालच करने वाले व्यक्ति को एकदम ही नीचे लगा देता है। टोकन सिस्टम चलता है, लाइन सिस्टम नहीं चलता, अहंकारी व्यक्ति तो यही रहने वाला है डेफिनेटली। तो उसमें बता रहे थे कि वो प्रभु जी बहुत सुंदर बता रहे थे, कहते हैं कि हम लोग एयरपोर्ट पे थे है ना, और एयरपोर्ट पे रहने के कारण क्या हुआ कि जैसे ही एयर फ्लाइट उतरी तो हमारे को दूसरी फ्लाइट के लिए टिकट्स लेने थे, तो नीचे उतरे तो सीधा जाकर 2-3 भक्त थे, जैसे होते हैं 4-5-3 भक्त थे, तो बोले 2 भक्त तो अटैची ब्रीफकेस लेकर आ रहे थे और जो ये भक्त थे जो कथा सुना रहे हैं ये बोले ये गए थे जाकर, इन्होंने एयरपोर्ट की जो डेस्क होती है उस पर जाकर बोला टिकट्स, तो वो लेडी जो होती है वहाँ पर उसने भी फटाफट टिकट्स को डाला और उनको सीट नंबर दे दिया। तो ये बोले खुश होने लगे, यार देखो बाकी लोग कितने बेवकूफ है ना, इंडियंस लोग सबसे समझदार होते हैं। एक हस्बैंड भी बैग लेके आ रहा है, वाइफ भी बैग लेके आ रही, बच्चे भी अपना बैग लेके आ रहे हैं, वो मुझे देखो मैं कितना समझदार हूँ। मैंने क्या किया, 2 भक्तों को बोला एक बैग कंधे पे टांगो, एक ड्रैग करो खींचो और मैं जाता हूँ टिकट लेता हूँ। तो मैं टिकट लेने आ गया और ये 2 लोग बैग लेके आ रहे हैं और हम तीनों को पहली सीट मिल गई। देखा ये होता है इंटेलिजेंस, इंडियन दिमाग। हम भजन करते हैं ना, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि देते हैं, खुश हो रहे थे। और फिर क्या हुआ, जैसे ही एयरपोर्ट का टाइम आया तो ये लोग बोले कि पहला नंबर हमारा है, तो सबसे पहले बैग उठाकर बोले बोर्डिंग का टाइम आ गया। तो जैसे ही जाने लगे तो वहां पर क्या हुआ, गार्ड ने रोक दिया, बोले आप साइड हो जाइए। तो क्यों, हमारा टाइम है, फर्स्ट नंबर सीट। कह रहे सर एग्जैक्टली करेक्ट, फर्स्ट नंबर तो है पर टुडे 11 o'clock नहीं है, इसमें लिखा टुमारो 11 o'clock, कल की फ्लाइट है, टिकट है आपका। अरे हमारी तो फ्लाइट आज की, हमारा आगे प्रवचन है, हमें जाना है। कह रहे तो फिर आप जाकर वहां पर बात करिए। तो ये फिर वापस आते हैं, गया देखते हैं 250 लोग खड़े हुए लाइन में। तो जाकर बोलते हैं उसका, हेलो 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 ये चेंज करो टिकट। कह रहे पीछे आइए सर, क्यू में आइए, क्यू सिस्टम, क्यू में आइए, आपको पीछे से आना पड़ेगा, उसके बाद भी अगर सीट बची तो हम आपको सीट देंगे। ओह टेंशन तो बता रहे थे प्रभु जी, तब समझ में आया कि हम कितने पे दिमाग लगाए इधर उधर की, लेकिन जो भगवान ने जिसका बोल रखा है ना, जो पहले जाएगा वही पहले जाएगा। वो इतना सब कुछ पहले पहुंचने के बाद भी क्या हुआ, 250 के पीछे गए, और उसके बाद जब 250 लोग पूरे समाप्त हो गए तब उसने चेक किया और बोली कि हाँ 4 लोग कैंसिल कर गए, इसलिए आपको 3 सीटें मिलती हैं। तो सबसे आखिरी की सीटें मिली, तब सारी बसें जा चुकी थी, तो इनको ट्रॉली छोटे वाले ऑटो में बिठा कर भेजा गया या ये एयरप्लेन के अंदर, और लास्ट सीट मिली। तो देखिए, हो सकता है कोई व्यक्ति सोचे देखा मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, शॉर्टकट मारा और मैं भगवान के घर जल्दी निकल जाऊंगा। तो कोई शॉर्टकट नहीं भगवान के घर जाने का। जब भौतिक में शॉर्टकट नहीं मिलता तो आध्यात्मिक में कहाँ शॉर्टकट मिलेगा ना। तो भगवान भगवद गीता में एक चीज बता रहे हैं यहाँ पर, जो परीक्षित महाराज स्थापित कर रहे हैं कि देखिए कितनी भी टेंशन हो हमको है ना, भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आप देखें कुछ लोगों को प्रचार करते हैं तो बोलते हैं हम क्यों गीता पढ़ें, हम क्यों भागवत पढ़ें, हम क्यों हरि नाम लें, हम तो ग्रस्त है, ग्रसित है, बंधे हुए हैं। तो एक हिंदोली में दादा गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं अगर बंधे हुए हो तो खुलो, है ना। कोई व्यक्ति बोले हम तो जाल में फंसे हुए हैं, माया में हैं, तो भैया फंसे हुए तो जाओ उसके पास जो काट सकता है, है ना। इसी प्रकार से ग्रस्त व्यक्ति को समझना चाहिए कि भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को क्यों बोली, क्यों बोले, क्योंकि वो ग्रस्त थे, सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे नहीं, ग्रस्त थे। और किस वक्त में बोली, जब एकदम फ्री थे, पेड़ की छाया थी, वृक्ष के नीचे बैठे थे, आओ चलो कुछ कर ले चर्चा, तो भगवत गीता शुरू नहीं, कब बोली, जब युद्ध की स्थिति थी। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में भगवान भगवत गीता बोल रहे हैं जिस स्थिति में व्यक्ति एकदम टेंशन में है, एकदम स्ट्रेस में है कि मैं अपने परिजनों को कैसे मारूं, इस स्थिति में है तब भगवान भगवत गीता बोल रहे हैं। और उस स्थिति में बोल रहे हैं कि मेरे नामों का जप करो, मेरे शरण में आओ, तो उस समय में कोई आदमी को समझ में आएगा भगवान ये सब बंद करो, पहले ये टेंशन खत्म करो। हम तो यही मांगते हैं ना भगवान से, थोड़ी सी टेंशन हो ऑफिस की या परिवार की तो हम भगवान के आगे दंडवत करते हैं और बोलते हैं पहले टेंशन सॉल्व करो तो भजन अच्छे से करूंगा। और यहाँ भगवान कह रहे हैं इतनी टेंशन में भजन करो, और किसको बोल रहे हैं, ग्रस्त व्यक्ति को बोल रहे हैं। तो सिंपल है कि ये भगवद गीता और भगवान का नाम एग्जैक्टली ग्रस्त व्यक्ति के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। उस व्यक्ति को तो बहुत जरूरत है क्योंकि टेंशन से मुक्त होना है, लेकिन एक व्यक्ति जो सन्यासी या ब्रह्मचारी है उसके पास कम से कम ग्रस्त की प्रॉब्लम तो नहीं है ना, है ना। उसके पास भजन करने के लिए भगवान ने व्यवस्था बनाई है, या उनका दृढ़ प्रतिज्ञा थी, उन्होंने उस तरह व्यवस्था अपनी बनाई है। लेकिन हम जो फंसे हुए हैं व्यक्ति ग्रस्त में, उसका तो कर्तव्य है कि वो क्या करे, भगवान की शरण ग्रहण करे, क्योंकि अर्जुन ने ग्रहण करी है ना। इसी प्रकार से एक बार बता रहे हैं कि शिला प्रभुपाद की तरह हमको श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के रास्ते पर। शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर एक बात बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, अमेरिका में इस्कॉन को कल्ट बोल दिया गया, एक ऐसी सोसाइटी बताया गया जो क्या करती है, वो सोसाइटी जो लोगों को सम्मोहन करके समाप्त कर देती है, क्या करती है, लोगों का ब्रेन वॉश कर देती है। तो एक भक्त ने शिला प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद लेटर लिखा कि हमारी सोसाइटी को क्या बोला गया है, एक कल्ट बोला गया है, एक ऐसी सोसाइटी जो लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है। अरे अच्छा, तो और उसके अगेंस्ट केस भी कर दिया, कोर्ट में केस चल रहा है। तो प्रभुपाद बोले फिर आपने कोई डिफेंस अपने लिए, कोई डिफेंस लॉयर ढूंढा, कोई लॉयर ढूंढा है। तो भक्त बोले नहीं प्रभुपाद, कह रहे ठीक है कोई जरूरत नहीं है, तो जो वहां के जो टेंपल प्रेसिडेंट है उनको बोलो वो जाया करें डिफेंस करने के लिए। बोले प्रभुपाद हम बोलेंगे कि हमको तो लॉ आती नहीं। प्रभुपाद बोले भागवतम किस लिए दिया गया है, श्रीमद भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक से आप लड़ाई शुरू करना अपनी, जब वो वहां पर आपको केस करे, कुछ केस बोले, तो आप इधर से क्या बोलना, पहला श्लोक बोलना। प्रभुपाद तो भक्त बोले अच्छा प्रभुपाद, और तात्पर्य के साथ बोलना, ठीक है प्रभुपाद। फिर दूसरे दिन बोले दूसरा श्लोक, तीसरे दिन तीसरा श्लोक। तो प्रभुपाद ने ऑर्डर दिया कि उस क्लास को जो केस है उसको किसने बदल दो, श्रीमद भागवत क्लास में बदल दो, प्रचार का कोई भी मौका ना छूट पाए, इस प्रश्न प्रभुपाद ने बोला। तो भक्त बड़े प्रसन्न हुए, भक्त बोले कि पता नहीं कैसा होगा, भक्तों को श्रद्धा तो थी अपने गुरु के शब्दों पर, और श्रील प्रभुपाद की बात मानकर सारे के सारे भक्त ऐसा ही करने लगे। 15 दिन बीत गए, जब 15 श्लोक निकल गए और रोज तात्पर्य होता, प्रवचन होता, एक घंटा निकल जाता, वो बोलता आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। तो बोलते बस
ये यथाम माम प्रपद्यन्ते, भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्याजामि। यहाँ पे श्लोक चल रहे हैं और उधर से वो बिचारे और क्लास चल रही, बाकी लोग बीच में जब भी करने लग गए, कुछ भक्त लोग जो सुनने आते थे केस, वो लोग कह रहे थे फीडबैक कहाँ से मिलता है, अच्छा हम आत्मा है, ऐसे प्रश्न होने लग गए। और जज बोलता है क्या हो रहा है, भागवतम क्लास बदल गया है पूरा। तो उसको बहुत टेंशन हुई, तो उसने फोन किया, किसको फोन किया, अपने एक मित्र को फोन किया जो कि बॉस्टन में था और हॉवर्ड डिविनिटी कॉलेज का वो प्रोफेसर था, हेड प्रोफेसर, डिवाइनिटी कॉलेज के प्रोफेसर था। उसको फोन किया, अरे बात बताओ तुम तो डिवाइनिटी कॉलेज के प्रोफेसर हो, अलग अलग धर्म शास्त्रों को पढ़ते हो, कॉलेज में हम दोनों दोस्त हैं, तुम्हारा वो करियर है, मेरा करियर लॉ का है, मुझे बताओ ये जो हरे कृष्णा वाले हरे राम वाले हैं, क्या ये लोग सच में कोई धर्म है या ये समूह करके लोगों को ऐसे करते हैं। तो बोला कि नहीं नहीं, मैंने उनकी भागवत गीता एज इट इज और श्रीमद् भागवतम दोनों अंग्रेजी में पढ़े हैं, और उसमें जो उनके फाउंडर आचार्य हैं स्वामी श्रील प्रभुपाद, उसने तात्पर्य, उन्होंने तात्पर्य में जिस प्रकार लिखा है उससे यही समझ में आता है कि ये एक परंपरागत जो है धर्म है, संस्था है, तो इसलिए इनको आप मुक्त कर दो, छोड़ दो। तो वहां से फिर उन भक्तों को कैंसिल करवा दिया गया, छोड़ दिया गया, वो केस ही कैंसिल हो गया। किस कारण से कैंसिल हुआ, श्रील प्रभुपाद पर भक्तों की श्रद्धा और प्रभुपाद की ग्रंथों की श्रद्धा, भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद ने बोला प्रचार करो, प्रीचिंग, वे मत सोचो कहां फंस गए, क्या फंस गए, क्या करेंगे, टेंशन में ग्रस्त में। जैसे प्रकार परीक्षित महाराज की माँ उत्तर आकर भगवान को पुकार रहे हैं, ऐसे हमको हर एक परिस्थिति में जितनी भी टेंशन हो, ऑफिस की हो, परिवार की हो, ग्रह खाके वन खाके सदा हरि बोले डाके, सदा भगवान के नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए, मस्त एकदम भगवान के ऊपर और गुरु के ऊपर भरोसा करते हुए। ऐसे एक कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति था धौम्य ऋषि का शिष्य उपमन्यु, उस उपमन्यु ने क्या किया, उपमन्यु बोला कि धौम्य ऋषि मैं आपकी शरणागत होना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो मैं कहूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। कह रहे ठीक है, मैं आपकी शरणागत हूं, मैं आपके प्रवचनों से बहुत ज्यादा क्या हूं, आकर्षित हूं, आपकी कथा से मैं बहुत आकर्षित हूं, मैं कृष्ण से आकर्षित हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपकी शरण में रहूं, आपकी सेवा करूं। तो उपमन्यु को धौम्य ऋषि ने बोला कि तुम गायों को चराया करो और गुरु के लिए भिक्षा मांग के लाया करो। तो धौम्य ऋषि का शिष्य उपमन्यु रोज भिक्षा मांगने जाता और गायों को चरने के लिए, घास चरने के लिए छोड़ देता। तो शिष्य का ये कर्तव्य है कि वो जब भिक्षा मांगने जाए घर घर जाकर, तो जो भिक्षा मिले किसको देनी चाहिए, गुरु को देनी चाहिए, और फिर गुरु की इच्छा हो तो उसमें से कुछ शिष्य को दे सकते हैं। तो जब ये भिक्षा लाकर ऋषि को देता तो ऋषि कभी भी उपमन्यु को कुछ भी नहीं देते, और कभी कभी ये क्या करता, बीच में से एक मुट्ठी खुद ही खा लेता, कह रहे ऋषि तो देते नहीं है। तो उन्होंने बोला कि उपमन्यु क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ चोरी करते हो, क्योंकि तुम्हारा वजन बढ़ता जा रहा है, मैं पिछले कुछ समय में महसूस करता हूं कि तुम्हारी चर्बी, तुम्हारे गालों का मोटापा बढ़ रहा है। तो बोला कि गुरु महाराज मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, आप गुरु हैं, मैं क्या करता हूं कि आप ही की भिक्षा में से कुछ पार कर लेता हूं। तो ऐसे ही हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी मंदिर की सेवा करें, जैसे मान लीजिए भोग बनने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए कुछ आइटम लाए, फ्रूट लाए, बोले अरे अपना ही तो है, एक फल खा लिया तो क्या फर्क पड़ता है। जब तक हम अथॉरिटी को, गुरु को न समर्पित कर दें, उसके बाद अथॉरिटी चाहे हमको कुछ भी दे, एक फल दे, आधा फल दे, लेकिन हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। जब इस प्रकार से भक्त सोचेगा तब उसकी शरणागति भगवान पसंद करेंगे, अन्यथा क्या है, नाटक, ड्रामा बोलते हैं ना, हम कर्नाटक के भक्त बन जाएंगे, कर नाटक, नाटक करते रहेंगे, हम इंडिया गेटी के भक्त नहीं बने, कर्नाटक के भक्त हो जाएंगे। तो फिर इसी प्रकार से उपमन्यु क्या करता था, अपने गुरु की बात मानकर जो भी भिक्षा आती उनको देता, और गुरु कभी भी उनको खाने को नहीं देते। कुछ समय बाद देखा कि उपमन्यु का वजन फिर बढ़ रहा है, तो उन्होंने गुरु ने पूछा कि तुम अब भिक्षा तो नहीं लेते हो, लेकिन फिर तुम्हारा वजन कैसे बढ़ रहा है। बोला गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आजकल मैं क्या करता हूं, गायों का जो दूध आता है वो लाकर आपको दे देता हूं, उसमें से एक लोटा मैं भी सुबह सुबह चढ़ा देता हूं। तो गुरुदेव बोले अरे तुमसे किसने कहा उपमन्यु उस प्रकार से दूध पीने के लिए। कह रहे गाय अपनी है, चारा मैं चराता हूं, पूरा दिन मेहनत करता हूं, खाने को मिलता नहीं तो सोचा इसी से, वरना मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। गुरु बोले सेवा की शक्ति तुम्हें परंपरा से प्राप्त होगी, तुम ये अपनी इच्छा से कैसे तुमने कोई भी कार्य किया। तो यहां पर बता रहे हैं कि अपनी इच्छा से भक्त को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यहां तक कि यहां तक कि उसको किसी को प्रचार भी करना है तो अथॉरिटी से पूछना चाहिए भाई इसको प्रचार करे ना करे, यहां पर जगह पर जाए या ना जाए, अगर कोई व्यक्ति बोले या गुरु बोले कि हाँ जाइए करिए तो फिर क्या उसको शक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा क्या है श्रम है भी केवलम, वो भी अपना माता फ्राई करेगा सामने वाला का भी फ्राई करेगा और खत्म हो जाएगा, कोई प्रीचिंग नहीं होगी। अथॉरिटी बोले हाँ जाइए आप प्रचार करिए, फिर उसको क्या है एनर्जी प्राप्त होती है, परंपरा की शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि हम लोग तो बोलते नहीं है ना, बोलने वाला कौन है, हृदय में विराजमान कृष्ण। आप अब सोचे ये स्पीकर जो लगा है स्पीकर, ये कल को खुश होने लग जाए, देखा कितना सुंदर कीर्तन करता हूं, देखा कितनी अच्छी लेक्चर देता हूं, लेकिन असली आवाज कहां से आ रही है, माइक से। इसी प्रकार से अगर ये शरीर खुश होने लग जाए, वाह कितना अच्छा लेक्चर, कितना अच्छा कीर्तन, देखा मेरी धुन मेरी ट्यून, वो व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि आवाज कहां से आ रही है, ये आवाज यहां से, कृष्ण जो चाहते हैं उसको वैसी स्थिति प्रदान करते हैं, अगर वो नहीं चाहेंगे तो गला बंद हो जाता है लोगों का, फिर वो कितना भी प्रयास करे बोल नहीं पाते हैं, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना। मोहम्मद अली जो कि एक ही गुस्से में लोगों को गिरा देता था, आज वो पैरालाइज बॉडी में एक कप चाय का भी नहीं उठा सकता, पार्किंसन डिसीज हो चुका है, तो भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ हो रहा है, इसी से हमको विनम्रता हमारे जीवन में आएगी। तो उपमन्यु फिर क्या किया, दूध पीना बंद कर दिया, लेकिन फिर गुरुदेव ने कहा उपमन्यु अभी भी तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, अब तुम क्या खाते हो, तो उन्होंने कहा कि देखिए गुरु महाराज मैं दूध पीना बंद कर दिया हूं, भिक्षा नहीं लेता हूं, लेकिन जो चारा वो खाती है गाय, और खाने के बाद जो मलाई बाहर निकलती है ना, तो मैं उसके मुंह से पोंछता हूं और खा लेता हूं, उस क्रीम को खाने से मेरा शरीर कम हो गया। तो गुरुदेव बोले तुमको किसने कहा, मैं तुमको बार बार तपस्या और वैराग्य की तरफ ले जाता हूं, तुम बार बार पीछे चले जाते हो, जितना ऊपर चढ़ते हो उतना ही नीचे उतर जाते हो, तुम्हें कब तुम्हारे अंदर शरणागति का भाव आएगा। उपमन्यु बोला कि ठीक है गुरुदेव जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, अब मैं कुछ भी पान नहीं करूंगा, और इतने के बाद भी वो माना नहीं, इतनी बार बोलने के बाद भी एक दिन भूख लगी तो बोला मैं दूध नहीं पी सकता, क्रीम नहीं पी सकता, भिक्षा का दाना नहीं खा सकता, तो मैं क्या खाऊं, तो उसने पेड़ के कुछ पत्ते तोड़े और खा लिए, बोले ये तो गुरुदेव की नहीं है, है ना, तो उसने वो पत्ते खा लिए, जब खाए तो उसकी नेत्र चले गए, क्योंकि वो जहरीले पत्ते थे, उसकी नेत्रहीन हो गया और अंधा होकर एक गड्ढे में गिर पड़ा, और गिर पड़ा तो जोर जोर से अब एहसास करने लगा, जब भक्त भी गिर जाता है मुसीबत में आता है तब फिर याद आता है मैंने कहां गलती करी, जब मुझे भक्त जन बोल रहे थे चल 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 तब मैं नहीं माना, और आज मैं गुरुदेव की बात ना मानने के कारण कहां हूं ऐसी विपरीत परिस्थिति में आया। और फिर उसने क्या बोलना शुरू किया जोर जोर से,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम।
जब इसका इस प्रकार से बोला तो उसी आश्रम के कुछ भक्त वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा अरे ये तो उपमन्यु की आवाज है, तो गड्ढे में देखा तो उपमन्यु था और दोनों से भगवान का नाम पुकार रहा था, तो भगवान की व्यवस्था थी, भगवान ने उपमन्यु के लिए उन भक्तों को वहां भेजा। जब वो भक्त वहां आए तो उपमन्यु को हाथ पकड़ के बाहर निकाले, बोले क्या हुआ, बोले मैं गुरुदेव की शिक्षाओं के अनुसार नहीं चला, मैंने उनकी बात नहीं मानी और आज इस विषम परिस्थिति में आया हूं कि शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए भगवान के दर्शन करने के लिए मेरे नेत्र समाप्त हो चुके हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, अश्विनी कुमार जो कि ग्रहों में प्लैनेट्स के जो है डॉक्टर हैं आयुर्वेदाचार्य, उनको पुकारा, उनके मंत्र उच्चारण किए, अश्विनी कुमार प्रकट हुए और अश्विनी कुमारों ने क्या किया, कुछ प्रसाद बोला कि ये खाओ इसको खाने से तुम्हारे नेत्र वापस आ जाएंगे, तो अभी वो क्या बोला, अब कुछ नहीं खाऊंगा, अब कुछ नहीं खाऊंगा, जब तक गुरुदेव नहीं ऑर्डर करेंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो भक्त गए बोले गुरुदेव इस प्रकार की स्थिति है, भक्त पूरा का पूरा गिर चुका है, पूरी तरह से परेशान है, आप इसको बोलिए कि ये खा ले, तो गुरुदेव ने कुछ प्रसाद पाया और भक्त बोले कि ये लो, तो गुरुदेव खा चुके और बोला खिला दो, बोला नहीं नहीं मैं किसी की बात पे भरोसा नहीं करूंगा, जब तक गुरुदेव स्वयं नहीं बोलेंगे मैं नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार से बोला तो गुरुदेव के आंसू आंखों में आंसू आ गए, बोले ये है श्रद्धा कि जब विषम परिस्थिति में व्यक्ति आया तब उसने क्या किया, भगवान के नामों की शरण होकर गुरु को समझ पाया। इसीलिए हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आए तब हमको सोचना चाहिए ये क्या है, भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अब हम भगवान के लिए रोएं और रोएं और गुरुदेव की शरण में जाएं, वरना अभी तक हमको उनको क्या समझ रहे थे, मनुष्य शरीर मनुष्य समझ रहे थे और भगवान को भी क्या समझ रहे थे, मनुष्य समझ रहे थे या मूर्ति समझ रहे थे, अब समझ में आया कि भगवान की और गुरु की कितनी आवश्यकता है। जब इस प्रकार से उपमन्यु बोलते हैं तो फिर गुरुदेव आते हैं और उसको गले लगाते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख, मैंने तेरे को ऐसे थोड़ी कहा था कि कुछ नहीं खा सकते, प्रसाद तो खाओ कम से कम। और लाके अपने हाथ से गुरुदेव जब उपन्यु को खिलाते हैं तो उसके नेत्र वापिस आते हैं और नेत्र आने के बाद उनके चरणों पर गिर जाता है और कहता है कि गुरुदेव, अब आने वाले जीवन में कभी भी आपकी आज्ञा के विरोध में मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। तो ये श्रद्धा है, जिस प्रकार से हमको श्रद्धा होती है ना इस पंखे के ऊपर, सब क्लास में आके बैठ जाते हैं, कोई नहीं सोचता, 6-7 साल से मंदिर में पंखे लगे हुए हैं, कल को गिर गए तो भागवतम क्लास तो रह जाएगी, सर पे गिरेगा, हम कहीं हरी बोल। श्रद्धा है कि भाई बटन दबाया तो ये चलेगा ही चलेगा, गिरेगा नहीं, गिर भी तो सकता है ना, और कई बार गिरते भी। रक्षति ते विश्वास, न रक्षति ते विश्वास, भगवान गुरु रक्षा करे तो विश्वास, ना रक्षा करे तो भी विश्वास, वो व्यक्ति क्या होगा, दृढ़ विश्वास, है ना। जिस प्रकार से कथा आती है, एक राजा थे और वो अपनी महारानी के साथ में चल रहे थे तो अचानक से क्या हुआ, राज्य से लौट रहे थे तो बहुत जोर का तूफान आ गया, तूफान इतना भारी कि एकदम उसमें कोई भी व्यक्ति तृणाव्रत टाइप का, ना तृणाव्रत आता है जब भगवान को उठाने के लिए, तो पूरा बवंडर पूरा एकदम ऐसा हो जाता है कि मर ही जाएगा हर व्यक्ति, हर चीज उड़ जाती है, कार भी उड़ जाती है, रथ भी उड़, सब उड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से बहुत जोर का तूफान, तो राजा अपनी रानी के साथ चल रहे थे, रानी बोली रुक जाओ, इसी राज्य में रुक जाते हैं, कह रहे नहीं, हम अपने घर जाकर विश्राम करेंगे, चलते रहो। तो चलते रहते, फिर बारिश आती है बहुत भयंकर, जिस प्रकार से संवर तक बारिश होती है उसी प्रकार की भारी बारिश होती है, एकदम बुरा हाल हो जाता है, और फिर भी राजा और रानी चलते रहते हैं। रानी बार बार कहती है रुक जाओ, समझो मेरी बात, मानो मेरी बात। इसी प्रकार से भक्तों को भी बोला जाता है ना, अरे प्रैक्टिकली सोचो प्रभु जी, क्या ये शरणागत, ठीक है भगवान है गुरु है, इतना भी क्या करना, क्रेजी हो जाते हैं भक्त, क्रेजी नहीं होना है, ऐसे बोलते हैं बाहर के लोग, बहुत ही बड़े बड़े तो भक्तों को इस प्रकार से बोलते हैं और रोकना चाहते हैं उनकी भक्ति में, भक्त टांग पकड़ के खींचना चाहते हैं, लेकिन भक्त चलते रहते हैं और राजा भी चलता रहा। और चलने के बाद जब घर पहुंचा तो रानी को बहुत गुस्सा आया, मेरी कोई बात नहीं सुनते हो, जैसे अधिकतर पत्नियां पति से नाराज हो जाती हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते हो, मैंने बोला कि रुक जाओ तो रुके क्यों नहीं, अभी हम लोग मर जाते तो राजा ने अपनी तलवार निकाली और रानी की गर्दन काटा, अब मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, एक शब्द और बोला तो रानी हंसने लगी, तुम तो मुझसे इतना प्रेम करते हो, तुम मेरी गर्दन काटोगे तो मुझे मारोगे। तो राजा तलवार वापस ली, रुक गए, बोले क्या समझ में आया, कह रहे मतलब, कह रहे इससे शिक्षा मिलती है कि हमें विश्वास करना चाहिए, जो हमसे प्रेम करता है वो हमारा गला नहीं काट सकता। वो कृष्ण कौन है, सुहृदम सर्वभूतानाम, वो कौन है, सबके सुहृद है, सबके फ्रेंड है, सबके दोस्त है, मित्र है, वो कभी किसी का बुरा चाहेंगे, कैसी भी स्थिति आए समझ लो कौन चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं। इसीलिए कृष्ण के चाहने के कारण क्या हुआ, देखो मैं जो हूं इस प्रकार से चलता चला आया, भगवान की इच्छा के कारण तूफान बारिश में भी मैं जानता था कि मुझे घर जाकर क्या करना है, मंगला आरती करनी है, अगर मैं वहां रुक जाता तो मेरे विग्रहों की सेवा कौन करता। तो रानी बोली हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो जो भौतिक जमाने के लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि भक्त का श्रद्धा भक्त का प्रेम किस प्रकार का होता है। हम यही समाप्त करेंगे, परीक्षित महाराज से हमने यहाँ पर शिक्षा ली कि परीक्षित महाराज ने जिस प्रकार से कथाओं का श्रवण किया रुचिपूर्वक, उसी प्रकार हमें भी वासुदेव कथा रुचि, हमें वासुदेव की कथाओं में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए और हर परिस्थिति को सोचना चाहिए कि भगवान की दीवी है और हर परिस्थिति में भगवान का सहारा ढूंढना चाहिए, अन्यथा भौतिक सहारों को छोड़कर भगवान एकलव्य प्रभु कृष्ण, सिर्फ कृष्ण ही हमारे प्रभु हैं, ऐसा जो व्यक्ति सोचेगा वो दृढ़ विश्वास से क्या होगा, भगवान का भजन कर सकता है, अन्यथा वो इसी भौतिक संसार में आता रहेगा और ये मिथ्या अहंकार भी नष्ट नहीं होगा। इन सबको नष्ट करने का अनर्थ, आसक्ति, अविद्या, इन सबको नष्ट करने का एक ही उपाय है, क्या, एक अटेंटिव चलते हैं, भगवान के नामों का जप करो, थ्री एज गोज विद वन ए, तीन ए को समाप्त करना, अनर्थ, आसक्ति, अविद्या, अटेंटिव चलते हैं, है ना। तो भगवान के नामों का जप करें ध्यान पूर्वक, वही हमारी सारी चीजों का फल प्रदान करें। किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं, बाकी नो प्रश्न, थैंक यू। सुश्रवा गोविंद भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, पंच तत्व गौरताय की, पद पावन श्रील प्रभुपाद की, रंत्र श्रीमद भागवतम की, गौ प्रेमानंद।